भाग तीन, यीशु का अनुसरण करना। अध्याय आठ, शिष्यता क्या है। सुसमाचार का इरादा परिवर्तन लाने का है। अगर कोई व्यक्ति सुसमाचार का स्वीकार करता है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। यह वास्तव में कैसा लगता है? आप इस प्रश्न के उत्तर को याद कर सकते हैं। पहले मैंने कहा कि चेला तो यीशु के पीछे चलता है। पीछे चलने की बात के अर्थ को समझाते हुए मैंने कहा था कि अनुसरण करना या तो यीशु के स्वरूप को प्रकट करना, यीशु के रूप में रूपांतरित होना, यह हमारा अंतिम मकाम है। रोमियो 8:29, दूसरा कुरिन्थियों 3:18, कुलुसियों 3:10। यीशु का अनुसरण करने का हमारा उद्देश्य तो परमेश्वर हमसे प्रेम करे और हमें स्वर्ग में जाने दे, इसलिए हमें अच्छे कार्य करने हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने तो पहले से, यानी कि जब हम पापी ही थे, रोमियो 5:8, और परमेश्वर के बैरी थे, रोमियो 5:10, तब हमसे प्रेम किया। जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तब हम स्वर्ग में जाते हैं और परमेश्वर के परिवार के सदस्य बनते हैं। हम खोए हुए थे और हमें उद्धारक की जरूरत थी, लूका 19:10। हम परमेश्वर से अलग हो गए थे, इफिसियों 4:18। हमारी परिस्थिति ऐसी थी तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम पाने के लिए हम अच्छे कार्य करें, इसलिए परमेश्वर ने इंतजार नहीं किया। यीशु का अनुसरण करने का हमारा इरादा ऐसा है कि परमेश्वर हम पर प्रेम रखे, इसलिए हम अच्छे कार्य करें और अंत में हमारा उद्धार हो। जिसे अच्छे कार्यों से सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसे अच्छे कार्य न करने की वजह से खोया भी नहीं जा सकता। उद्धार को हमारी योग्यता और क्षमता के साथ कोई संबंध नहीं। उद्धार तो यीशु ने हमारे लिए जो कार्य किए हैं उस पर ही आधारित है। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। दूसरे कुरिन्थियों 5:21। हम उद्धार का श्रेय नहीं ले सकते, उद्धार का पूरा श्रेय यीशु को ही जाता है। शिष्यता के विषय में स्पष्ट विचार करना। शिष्यता में यह सब बातें कैसे लागू होती है उसके लिए हमें गौर से विचार करने की जरूरत है। मैंने पहले बात की है, वैसे ही कार्य के फंदे की वजह से हमें इस वास्तविकता को समझना जरूरी है कि उद्धार और शिष्यता एक ही बात नहीं है। अधिकांश विश्वासी उनके पाप के अपराध भाव की वजह से अनजाने में उनके कार्यों को सुसमाचार के साथ जोड़ने की शुरुआत करते हैं। उसका परिणाम तो यीशु हमें जो अनंत जीवन देना चाहते हैं वो नहीं पर आत्मिक बंधन है। यूहन्ना 10:10, दूसरा कुरिन्थियों 1:5, इफिसियों 3:20। उद्धार तो जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तब परमेश्वर के द्वारा दी गई भेंट है। उसके लिए योग्यता की जरूरत नहीं। हमारे पाप और परमेश्वर से अलगता होने के बावजूद परमेश्वर हमें यह भेंट देते हैं। शिष्यता तो सुसमाचार पर विश्वास करने के परिणाम स्वरूप हम जो करते हैं वो कार्य है। हम यीशु और परमेश्वर पर हमारा प्रेम प्रकट करने के लिए यीशु का अनुसरण करते हैं। यीशु परमेश्वर का स्वरूप है, इसलिए हम भी यीशु के जैसा जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। यीशु के जैसा पवित्र जीवन जीने के बहुत कारण है। उसमें से एक कारण तो परमेश्वर का प्रेम प्राप्त करने के लिए लायक या योग्य बनना नहीं है। उद्धार के लिए हमें कोई कीमत चुकानी नहीं है। यह तो सुसमाचार पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए मुफ्त है, पर शिष्यता की कीमत चुकानी पड़ती है। कई बार यीशु का अनुसरण करना सरल नहीं होता। चेला बनने के लिए परमेश्वर से प्रेम करने की, उनको सम्मान देने की और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की जरूरत है, क्योंकि लोग परमेश्वर के स्वरूप में है, इसलिए परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं और सुसमाचार के द्वारा अपने परिवार के सदस्य बनाना चाहते हैं। यीशु के जीवन के विषय में विचार करो, वो सरल नहीं था। बाइबल कहता है कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। पहला पत्रस 2:21। यीशु ने अपने जीवन का बलिदान दिया। उन्होंने प्रथम तो परमेश्वर से प्रेम किया और अपने पड़ोसी से भी प्रेम किया। तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। मत्ती 22:37-40। परमेश्वर उनसे प्रेम करे और उनसे प्रसन्न हो, इसलिए यीशु ऐसा जीवन नहीं जिए थे। यीशु तो इस जगत में आए और वाचा को पूरी करने के कार्यों को करे, उससे पहले परमेश्वर पिता यीशु से प्रेम रखते थे। परमेश्वर ने तो जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु से प्रेम रखा। यूहन्ना 17:24। यीशु का अनुसरण करना कठिन हो सकता है, क्योंकि कोई भी विश्वासी प्रथम बार विश्वास करता है तब वो यीशु जैसा नहीं होता। इसलिए सातत्य के साथ यीशु जैसा जीवन जीना कठिन लगता है। हर एक चेले को उसके हृदय और वर्तन को बदलने की जरूरत है। बाइबिल उसे मन फिराना या तो पश्चाताप कहता है। मैं जानता हूं कि मैंने ऐसा किया है। कुछ कार्यों को करना मुझे बंद करना पड़ेगा और कुछ कार्यों को करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, पर उनमें से कोई भी कार्य परमेश्वर मुझसे प्रेम रखें इसलिए योग्यता प्राप्त करने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने तो पहले से मुझ पर प्रेम रखा है। यीशु ने जो कार्य किए वो परमेश्वर पिता के प्रति उनके प्रेम की वजह से किए। यीशु तो लोगों को अपने पर और परमेश्वर की योजना पर विश्वास करने में सहायता हो, इसलिए ऐसा जीवन जिए। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। यीशु जानते थे कि वो क्यों इस पृथ्वी पर है, कैसे हमारे लिए मरेंगे और फिर से अपने पिता के पास जाएंगे। हमें भी अनंत काल के लिए ऐसा दृष्टिकोण रखना ही है। यह जगत हमारा वास्तविक घर नहीं है, यह तो अल्पकालीन या अस्थायी ठिकाना है। दूसरा जो है वो स्थायी निवास स्थान है। यीशु ने जो कार्य किए हैं उसकी वजह से जब हम इस जगत को छोड़कर जाएंगे तब दूसरे जगत में अनंत जीवन की विरासत को प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य तो हमारा उद्धार करने वाले परमेश्वर को वफादारी और कृतज्ञता बताना और दूसरे लोगों को परमेश्वर के परिवार में प्रवेश करने के लिए सहायता करने का होना चाहिए। अगर हम इसमें निष्फल हुए तो क्या होगा? अगर हम पाप करेंगे तो क्या होगा? हम यह दोनों कार्य करेंगे और परमेश्वर यह जानते हैं। परमेश्वर मनुष्यों को अच्छी रीति से जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि हम कैसे हैं, पर हमने परमेश्वर से प्रेम करने के लिए जो सबसे छोटा कार्य किया उससे पहले से परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं। जब हम परमेश्वर के बैरी थे और पापी थे, रोमियो 5:8, तब उन्होंने हमसे प्रेम रखा। हम परमेश्वर के परिवार में प्रवेश करें इससे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। तो अब जब हम उनके परिवार के सदस्य बन चुके हैं तो वे क्यों हमसे प्रेम कम रखेंगे या तो प्रेम करना बंद करेंगे? जब हम पाप करते हैं या तो निष्फल होते हैं तब वो हमें माफ करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस बात पर विश्वास करें और फिर से यीशु का अनुसरण करने के मार्ग पर वापिस आएं। क्यों यीशु जैसा जीवन जीना चाहिए? मैंने थोड़े समय पहले ही कहा है कि यीशु जैसा जीवन जीने के बहुत कारण है, पर उसमें से एक भी कारण परमेश्वर का प्रेम पाने के लायक होने का नहीं है। वे कारण कौन से है? प्रथम कारण तो यह है कि पाप खुद का विनाश करता है और सिर्फ हमारा ही नहीं पर हमारी आसपास के लोगों का भी नुकसान करता है। मैंने मेरे खुद के बड़े परिवार में शराब और नशे की दवाओं की लत और व्यभिचार की असरों को देखा है। स्वाभाविक रीति से यह सभी बातें जीवन का नाश करती हैं। उतनी ही स्वाभाविक बात यह भी है कि इस जगत की अविश्वासी संस्कृति जो आनंद और आत्मसंतोष देती है वो अंत तक नहीं रहते। संस्कृति हमें कहती है कि हमारे निर्णयों की वजह से दूसरों को कोई दुख क्यों न हो, पर हमें हमारे खुद के आनंद की संतुष्टि के लिए जीवन जीना चाहिए। संस्कृति हमें अनंत काल का दृष्टिकोण नहीं देती है, वो हमें आज के लिए जीवन जीना सिखाती है। संस्कृति हमें दूसरी कोई बड़ी बुलाहट नहीं देती है। बाइबिल ऐसी विचारधाराओं को उजागर करते हुए कहता है कि तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। 1 यूहन्ना 2:15-17। दूसरा कारण पहले कारण से कई बातों में विपरीत है। धार्मिक जीवन जीने से दूसरे लोग आशीषित होते हैं। सत्य यह है कि हम जिस रीति से जीवन जीते हैं उससे लोग आशीषित होते हैं या तो शापित होते हैं। यीशु ने लोगों की सेवा की और लोगों के लिए आशीष का कारण बने। आत्मसंतोष और आत्मशोषण के द्वारा संचालित की जाने वाली जीवन शैली का अनुसरण करने से परिपूर्णता नहीं होती। हर एक बड़े बाजार यानी कि सुपरमार्केट के समाचार उस वास्तविकता के उदाहरणों को बताते हैं। लोगों के लिए आशीषित बनने से यीशु को प्रकट किया जा सकता है, उतना ही नहीं पर वो लोगों को व्यक्तिगत परिपूर्णता में भी अगुवाई देता है। जब आप दूसरों की सेवा करने के लिए जीते हो तब आपके जीवन का अर्थ साकार होता है। तीसरा कारण यह है कि धार्मिक जीवन हमें सुसमाचार के गवाह बनाता है। लोग हमारे जीवन में अविश्वासी जगत से कोई अलगता नहीं देखते और दूसरों की सेवा करने वाले जीवन को न देखें तो उनको सुसमाचार पर विश्वास नहीं होगा, या तो वे भ्रांति में आ जाएंगे। वे हमारे जीवन को यीशु के संदेश से विपरीत देखेंगे। दूसरे शब्दों में कहे तो जब हम लोगों से कहते हैं कि यीशु उनसे प्रेम करते हैं तब लोग हमसे ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि हम यीशु के जैसा जीवन जिए। यह अतार्किक नहीं है। वैकल्पिक जीवन दंभ से भरा जीवन है और दंभ की प्रशंसा कोई भी नहीं करता है। धार्मिक जीवन जीने से स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त नहीं हो सकती है। हम हमारी आत्मिकता के गुणों से परमेश्वर को हमारे कर्जदार नहीं बनाते हैं। यहां बताए गए शास्त्र वचन हमें एक अलग बात पर ध्यान केंद्रित कराते हैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के संदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो 12:1-2। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। दूसरा तिमुथियस 2:19-21। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। फिलिप्पियों 2:1-8। शास्त्र के ये भाग हमें हमारा जीवन कैसे जीना है वो बताते हैं, पर हमने अभी भी शिष्यता के स्पष्टीकरणों को प्राप्त नहीं किया है। चेला कैसा जीवन जीता है? सद्भाग्य से यीशु और उनके मूल चेले और शुरुआत के मसीही लोग इस बात को स्पष्ट करते हैं। यीशु ने खुद जो कार्य नहीं किए थे वैसे कोई भी कार्य को उनके चेलों को करने के लिए नहीं कहा था। उनके चेलों ने उनके दिए गए नमूने का अनुसरण किया और कलिसिया के शुरुआती दिनों में दूसरे लोगों को भी ऐसा ही करना सिखाया था।